नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर श्री मोदी हवाई अड्डा परिसर का निरीक्षण भी किया। एक रिपोर्ट।
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। इस हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी है जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और नागरिकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकताएं हैं। श्री मोदी ने कल शाम कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में ये बात कही। बैठक का उद्देश्य संघर्ष के समय देश की तैयारियों की समीक्षा करना था। श्री मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे आपूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना सुनिश्चित करें और जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उत्पन्न वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में दैनिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है और देश ने इस संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया है। नई दिल्ली में कल शाम निजी मीडिया सम्मेलन में गृहमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में पेट्रोलियम भंडार को मजबूत करने और सुरक्षित रखने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों ने आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित की है। पश्चिम एशिया में वर्ष 2014 से यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण रखने वाले हौसी विद्रोहियों ने आज सुबह इसराइल पर पहली मिसाइल दागी। यमन के इस संघर्ष में प्रवेश करने से ये और तेज हो गया है। ये तनाव ईरान और हिजबुल्ला के बीच रात भर हुई भीषण गोलीबारी के बाद बढ़ा है। इस कारण बीरशेबा और इसराइल के प्राथमिक परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में तीन अलग अलग मौकों पर सायरन बजे। सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक संघर्ष विराम के कारण हौसी विद्रोहियों ने पहले प्रत्यक्ष हमले नहीं किए थे, परंतु अब हौसी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने ईरान को समर्थन देने को कहा है क्योंकि लाल सागर में जहाजों पर हौसी विद्रोहियों के ड्रोन हमलों के कारण लगभग $1 ट्रिलियन के वार्षिक वैश्विक व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है। जवाबी हमलों में इसराइल ने ईरानी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इससे पहले इसराइल द्वारा कल रात ईरान के प्रमुख इस्पात, बिजली और परमाणु संयंत्रों पर हमले तेज करने से पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है जिससे मौजूदा संघर्ष और भी तेज हो गया है। ईरान ने हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ये हमले राजनयिक प्रयासों को कमजोर करने वाले और वार्ता की समय सीमा का उल्लंघन करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO में होने वाली चर्चाओं में उरुग्वे दौर के दौरान उत्पन्न असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और वैश्विक व्यापार में भाग लेने का उचित अवसर मिलना चाहिए। श्री गोयल ने कैमरून में आयोजित 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं से मुलाकात भी की। ओडिशा के नयागढ़ जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 40 से अधिक घायल हो गए। ये दुर्घटना हनुमान घाटी के निकट ब्रह्मपुर से हरिशंकर जा रही एक निजी पर्यटन बस के सड़क किनारे चट्टान से टकराकर पलटने से हुई। बस में 60 यात्री सवार थे। विधि और न्याय मंत्रालय कल नई दिल्ली में समग्र न्याय तक पहुंचने के लिए अभिनव समाधान डिजाइन दिशा योजना के टेलीलॉ पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने की आशा व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।